ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा का बजट इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। बजट के मद्देनजर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किसानों से मुलाकात की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कहा कि गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर कोवर्किंग स्पेस मेट्रो डेस्क शुरू करेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने होली वाले दिन राजधानी में 7,000 से ज्यादा चालान काटे और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया कल दिल्ली में फिट इंडिया उत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र इस महीने की 24 तारीख से 26 तक चलेगा। भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बनने के बाद यह उनका पहला बजट होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बजट को लेकर कई बैठकें कर रही हैं। बजट के मद्देनजर उन्होंने आज कई किसानों से मुलाकात की। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली के हर गांव और देहात क्षेत्र में रह रहे किसानों को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि आज किसानों ने अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखी।
विकसित दिल्ली बजट के निमित्त हमने दिल्ली के कोने कोने से गांव देहात के अपने किसान भाइयों को यहां बुलाया था और अनेकों प्रकार की समस्याएं उन्होंने हमारे सामने रखी। आज हमारे देहात को दिल्ली सरकार से अनेकों उम्मीदें हैं और मैं उन्हें ये विश्वास दिला करके यहां खड़ी हूं कि जितनी भी समस्याएं उन्होंने दिल्ली सरकार के समक्ष रखी है एक एक समस्या को समाधान मिलेगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश साव सिंह वर्मा ने कहा कि गांव के बुनियादी सुविधा से संबंधित कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि से संबंधित कामों को जल्द सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि अब सरकार जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम NCRCT ने कहा कि गाजियाबाद में नमो भारत स्टेशन पर कोवर्किंग स्पेस मेट्रो डेस्क शुरू करेगा। NCRTC ने कहा कि यह पहल शहरी ट्रांजिट स्पेस को व्यावसायिक हब में बदलने की दिशा में एक नया कदम है जो नमो भारत नेटवर्क के अंतर्गत अपनी तरह का पहला कोवर्किंग मॉडल होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अत्याधुनिक कार्यक्षेत्र गाजियाबाद और आसपास के पेशेवरों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के लिए उपयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है।
दिल्ली नमो भारत के जरिए यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा प्रदान करना NCRTC की प्राथमिकता रही है और इसी दिशा में यह उनका बड़ा कदम है। NCRTC ने कहा है कि स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल पर स्थित इस कोवर्किंग स्पेस में 42 ओपन वर्क स्टेशन, 11 निजी कैबिन और 2 मीटिंग रूम होंगे जिसमें एक समय में लगभग 42 व्यक्ति और 11 कंपनियां कार्य कर सकेंगी। इस सेटअप में हाई स्पीड इंटरनेट और प्लग एंड प्ले वर्क स्टेशन जैसी सुविधाएं होंगी जो निर्बाध उत्पादकता और सुविधा सुनिश्चित करेंगी। यहां बायोमेट्रिक एंट्री और डिजिटल की कार्ड के माध्यम से स्मार्ट एक्सेस सुनिश्चित किया जाएगा जबकि एक समर्पित प्लेटफॉर्म के जरिए आरक्षण, मेंबरशिप, प्रबंधन और कैशलेस लेन देन को सहज बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां हॉट डेस्क, वेंडिंग मशीन और फीडबैक संग्रह के लिए QR आधारित कैन एंड यूज विकल्प भी उपलब्ध होंगे। स्टेशन के अंदर स्थित होने के कारण यह पेशेवरों के यात्रा समय को कम करेगा और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। गाजियाबाद मेरठ मार्ग पर स्थित यह स्टेशन विशेष रूप से मेरठ तिराहा मोड़ और दिल्ली मेट्रो के शहीद स्थल नया बस अड्डा स्टेशन के पास होने के कारण भारी संख्या में यात्रियों को आकर्षित करता है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली यातायात पुलिस ने होली वाले दिन राजधानी में सख्त कार्रवाई की जिसमें सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक लोगों के 7,000 से ज्यादा चालान काटे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह कार्रवाई हाल ही में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार की गई थी। मीडिया से बातचीत में यातायात पुलिस उपायुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि दिल्ली यातायात पुलिस ने मुख्य चौराहों से लेकर आम सड़कों पर भी ट्रैफिक का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। श्री गुप्ता ने बताया कि दिल्ली यातायात पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने, 3 सवारी बैठाने, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने, टिंटेड ग्लास समेत कई घटनाओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में चालान काटे हैं।
हम लोग सभी एरियाज में थे, हम लोग पेट्रोलिंग करते रहे और चेक करते रहे, हमारे स्टाफ रहे, काफी अच्छा अरेंजमेंट निकला। ड्रंकन ड्राइविंग विदाउट हेलमेट इस सब में तो हमने चालान किए हैं। इसके अलावा हमने विदाउट पॉल्यूशन के भी 798 पॉल्यूशन कल किए हैं और जो ओल्ड एज व्हीकल्स हैं 32 हमने गाड़ियां सीज करी हैं।
लोक निर्माण विभाग PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज रोहतक रोड का निरीक्षण किया। यह सड़क हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो लंबे समय से खराब स्थिति में था। पिछले महीने से यहां जल निकासी निर्माण कार्य जारी है। स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद श्री वर्मा ने इस सड़क की जिम्मेदारी PWD से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर मंत्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि परियोजना में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने कहा कि अनुमतियों में देरी से परियोजना की लागत बढ़ती है, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दिल्ली मेट्रो की केबल चोरी के मामले में दिल्ली मेट्रो पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेट्रो पुलिस ने कहा कि 3 लोगों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और 2 लोगों को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया। मीडिया के साथ बातचीत में दिल्ली मेट्रो पुलिस आयुक्त हरेश्वर स्वामी ने कहा कि आरोपी दिन में मेट्रो ट्रैक का निरीक्षण कर स्थान को चिन्हित करते थे और रात में केबल काट देते थे।
ये दिन में जब मेट्रो चल रही होती है तब जाके ट्रैक का मुआयना करके और फिर रात में निकल के वैसी जगह पर जहां एक्सेस भी है और कोई प्रेजेंस नहीं है वैसी जगह ढूंढ के फिर वहां पे केबल कट करते थे। जो 5 हमने एक्यूज पकड़े उसमें से 3 एक्यूज जो है ऑलरेडी अलग अलग केसेस में अरेस्ट हो चुके हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। यह दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकारों और उनकी सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने तथा उन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी अवसर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय है, सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ता भ्रामक दावों के विरुद्ध पूरी तरह जागरूक और सुरक्षित हों। श्री जोशी आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए सरकार ने शिकायत निवारण तंत्र को आधुनिक बनाया है। श्री जोशी ने कहा कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में ग्राहकों की सहायता के लिए उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 बनाए गए हैं और भारत में ग्राहक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मील का पत्थर साबित हुई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने कहा कि सरकार उद्योग जगत को सतत नवाचार और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। श्री जोशी ने कहा कि सरकार न केवल उपभोक्ताओं के संरक्षण बल्कि उपभोक्ताओं की समृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया उत्सव का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3 दिन तक चलने वाले फिटनेस और वेलनेस उत्सव का उद्देश्य फिट इंडिया अभियान के अनुरूप ज्यादा स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली तथा मोटापे मुक्त राष्ट्र को प्रोत्साहन देना है। इस दौरान रस्सा कूद, क्रिकेट बॉलिंग और स्टेशनरी साइकिलिंग तथा पंजा लड़ाना जैसे खेलों का आयोजन होगा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से तथा अभिनेता आयुष्मान खुराना भी उपस्थित रहेंगे। समारोह में आगामी खेलों इंडिया पैरा गेम्स का प्रतीक चिन्ह और गीत का भी अनावरण होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस महीने की 20 तारीख से राष्ट्रीय राजधानी में आरंभ होंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
भाजपा ने कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में कुछ अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक बताया है। आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है।
Religious based reservation is not permissible under the Indian Constitution. जो संविधान की बात बार बार करते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है social backwardness, educational backwardness.
दिल्ली राज्य हज समिति ने आज दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मंत्री प्रवेश वर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित कई नेता शामिल हुए। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इफ्तार में आकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक सद्भाव के साथ रहना चाहिए। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हमें शांति और प्रेम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि इफ्तार का उद्देश्य सद्भावना और शांति है। उन्होंने कहा कि इस इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में लोग आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आईं, जिससे पता चलता है कि हमारा देश प्रेम और सौहार्द के सूत्र में बंधा हुआ है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस इफ्तार में एक जगह सभी लोगों का मिलना यह दर्शाता है कि दिल्ली में सरकार सौहार्द के साथ काम करेगी। वहीं उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि होली और रमजान का महीना भाईचारा और सद्भावना को बढ़ाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि हिसार हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लाइसेंस मिल गया है और जल्द ही हिसार से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। श्री गोयल ने इसे हरियाणा के नागरिकों के लिए गौरवशाली क्षण बताते हुए कहा कि हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, जम्मू, जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का संचालन और रखरखाव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 503 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक यात्री टर्मिनल का निर्माण कर रही है। इस टर्मिनल में यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस को सौंपी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। केंद्रीय बैंक को प्रवाह और सारथी नाम की डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें बैंक की इनहाउस टीम द्वारा विकसित किया गया था। पुरस्कार समिति ने कहा है कि इन डिजिटल पहलों ने कागज के इस्तेमाल को कम किया है। जनवरी 2023 में शुरू की गई सारथी पहल से रिजर्व बैंक में आंतरिक वर्कफ्लो डिजिटल हो गया, जिससे कर्मचारी सुरक्षित रूप से दस्तावेजों को संग्रहित और साझा करने में सक्षम बन गए। इससे रिकॉर्ड के रखरखाव में सुधार हुआ और रिकॉर्ड तथा डैशबोर्ड के माध्यम से डाटा विश्लेषण के विकल्प भी बढ़ गए। सारथी ने प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाकर बैंक की परिचालन दक्षता बढ़ाने में मदद की है। बैंक के उपभोक्ताओं के लिए मई 2024 में प्रभाव के रूप में शुरू की गई दूसरी पहल से उपभोक्ताओं को विनियामक आवेदन करने के लिए एक डिजिटल माध्यम मिल गया। इस पोर्टल के माध्यम से भेजे गए दस्तावेजों को सारथी डेटाबेस में प्लग किया जाता है। प्रवाह ने अब तक 70 से अधिक विभिन्न विनियामक अनुप्रयोगों को डिजिटल बनाने की अनुमति दी है। इस प्रणाली के माध्यम से 2000 से अधिक आवेदन दायर किए गए हैं। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन आज से शुरू हो गए। नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों तथा सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया, जो पिछले 3 वर्षों में 1 जनवरी और 15 मार्च के बीच की अवधि में सबसे कम है। राजधानी में आज धूप खिली रही, जिसके कारण मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। बजट के मद्देनजर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किसानों से मुलाकात की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन निगम ने कहा कि गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर को वर्किंग स्पेस मेट्रो डेस्क शुरू करेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने होली वाले दिन राजधानी में 7000 से ज्यादा चालान काटे। और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली में फिट इंडिया उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।